ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत श्रील वेदव्यास के द्वारा रचित अनुवाद और तात्पर्य संस्कृत से अंग्रेजी श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा षष्ठ स्कंद अध्याय 14 श्लोक संख्या 7 से 10 10 नंबर श्लोक हम शब्द पाठ करते आसीत राजा सर्व भौम सुरसेन सुरसेनेषु वै नृप चित्रकेतुः ख्यातः यस्य आसीत् काम धुक् मही आसीद् राजा सार्वभौम शूरसेनेषु वै नृप चित्रकेतुर् इति ख्यातो यस्यासीत् कामधुङ्महि आसीद् राजा सार्वभौम शूरसेनेषु वै नृप चित्रकेतुर् इति ख्यातो यस्यासीत् कामधुङ्महि सत्सेनो के श्लोकों का अनुवाद पहले पाठ करता हूँ। परीक्षित महाराज की उक्ति हे प्रभो सुखदेव गोस्वामी यद्यपि वृद्रासुर पापी असुर था किंतु उसने युद्ध में क्षत्रियोचित पराक्रम दिखाकर भगवान इंद्र को प्रसन्न कर लिया। ऐसा असुर क्यों कर भगवान कृष्ण का महान भक्त हो सका? इन विरोधी बातों से मेरे मन में अत्यधिक संदेह उत्पन्न हो रहा है, अतः मैं इस संबंध में आपसे सुनने के लिए परम उत्सुक हूँ। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित के इस उत्तम प्रश्न को सुनकर परम शक्तिमान ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने अपने शिष्य को अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तर दिया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मैं उस इतिहास को तुमसे कहूँगा जिससे मैंने व्यासदेव नारद तथा देवल के मुखों से सुना है। इससे सावधान होकर सुनो। और आसीद राजा यही श्लोक का शब्द अर्थ आसीद था राजा एक राजा सार्वभौम चक्रवर्ती राजा शूरसेनेषु Shurasen Namak Deshme. Vai Nisandeha. Nripa. He Raja. Chitraketu. Who? Chitraketu. Iti. Isprakar. Khyataha. Vikhyata. Yasya. Jiski. Asit. Ti. Kama. Dhuk. Samasta. Avashyakataon ko pradan karne wali. Mahi Prithvi. He Raja Parikshit. Shurasen desh me chitraketu nam ka ek chakravarti raja ta. Uske raja me prithvi se jivan ki samasta avashyak vastuen utpan hoti ti. Tatparya.
तात्पर्य यहां पर सबसे महत्वपूर्ण कथन यह है कि राजा चित्रकेतु के राज्यकाल में पृथ्वी समस्त आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न करती थी, जैसा कि ईशोपनिषद मंत्र 1 में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन चक्तेन भुञ्जीथा मा विदः कस्य सुधनम्। इस ब्रह्मांड में स्थावर जंगम जो कुछ भी है वह भगवान के वश में है और उन्हीं की संपत्ति है, अतएव अपने लिए निश्चित आवश्यक वस्तुओं को ही ग्रहण करना चाहिए और ऐसा जानकर दूसरे की वस्तुओं को भोगने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। परम नियंता कृष्ण ने इस भौतिक जगत की सृष्टि की जिसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं है। भगवान समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये आवश्यकताएं पृथ्वी से उत्पन्न है, अतः पृथ्वी की पूर्ति का स्रोत है। जब उत्तम शासक होता है तो इस स्रोत से जीवन की आवश्यकताएं प्रचुरता से उत्पन्न होती है, किंतु जब योग्य शासक नहीं रहता तो इनका अभाव रहता है। कामधुक शब्द का यही महत्व है। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र प्रथम स्कंद दशम अध्याय चौथे श्लोक में भी कहा गया है, कामं ववर्ष पर्जन्य सर्व काम दुधामहि। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में बादल मनोकूल वर्षा करते थे और पृथ्वी मनुष्यों की आवश्यक वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती थी। हमें अनुभव है कि कुछ ऋतुओं में प्रचुर वर्षा होती है तो कुछ में वर्षा का अभाव रहता है। पृथ्वी की गुणवत्ता पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि उस पर श्री भगवान का पूर्ण नियंत्रण है। उन्हीं की आज्ञा से ईश्वर कम या अधिक उत्पन्न कर सकता है। यदि कोई पवित्र राजा शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी पर शासन करता है तो नियमित वर्षा होती रहती है, जिससे सभी मनुष्यों के लिए प्रचुर उत्पादन होता रहता है। तब किसी प्रकार के शोषण की गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि सबों के पास प्रचुर अन्न होगा। तब काला बाजारी तथा अन्य अपराध स्वयं बंद हो जाएंगे। जब तक शासक में आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती, मात्र पृथ्वी पर शासन करने से मनुष्यों की समस्याएं हल नहीं हो सकती। उसे महाराज युधिष्ठिर, परीक्षित महाराज या श्री रामचंद्र के समान होना चाहिए, तभी देश के समस्त निवासी परम सुखी रहेंगे।
ये तात्पर्य से और श्रीमद् भागवत के बहुत तात्पर्य से भी हम समझ सकते श्रील प्रभुपाद का क्या भाव था श्रीमद् भागवत का प्रचार करने में। श्रीमद् भागवत का प्रचार भारतीय संस्कृति का एक मुख्य अंश है, नहीं विशेषकर वैष्णव संप्रदाय में भगवत कथा सात दिन व्यापी भगवत सप्ताह उसको बोलते हैं। परंतु जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद भागवत व्याख्या कहते हैं और जिस प्रकार पारंपरिक वो इस परंपरा के वक्तागण व्याख्या करते हैं और दोनों में बड़ा अंतर है नहीं। यदि हम किसी भक्तों को बुलाएंगे श्रीमद् भागवत का पाठ सुनने के लिए, वे वो मन में क्या उनका क्या धारणा होगी कि हाँ ठीक है हम कुछ लीला का कथा सुनेंगे और कुछ मीठी रसमयी कथा। तो वास्तव में श्रीमद् भागवत की कथा वैसे है रसमय, जैसे कल चर्चा थी कि कैसे भक्ति अहैतु की है, भक्ति की कोई भौतिक हेतु नहीं है। तो पूरा प्रवचन जो था वो तत्व ज्ञान के ऊपर था ना, सबका याद है सब जो खाओ उपस्थित थे। तो फिर भी वो कथा रसमयी थी। सामान्यतः यदि हम सुनेंगे कि वो तत्व ज्ञान के ऊपर कुछ चर्चा होगी तो हम इतना ज़्यादा उत्साही नहीं होंगे, हम रस कथा सुनना चाहते हैं। परंतु वास्तव में वो सब भगवत तत्व ज्ञान जो है, चूंकि वो भगवत तत्व है, भगवत तत्व ज्ञान है, भगवान उसका केंद्र बिंदु है, इसलिए वो रसमयी होते। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान अखिल रसामृत सिंधु है और सब प्रकार की चर्चा इनके बारे में सब रसमयी होती है। समय वो तत्व ज्ञान शब्द भी भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति में वो बहुत महत्वपूर्ण और साधारण शब्द है नहीं। और सामान्यतः वो तत्व ज्ञान शब्द सुनने से लोग क्या समझते, वो ऐसे कुछ अहम ब्रह्मास्मि वैसे जगत दुखमय है, हम सब आत्मा है, इसी प्रकार की बात है, लोग ऐसे सोचते। लेकिन भगवत तत्व ज्ञान है कि अहम ब्रह्मास्मि और कृष्ण परम ब्रह्म है, यही बात है। और परम ब्रह्म और अनु ब्रह्म, अनु और विभु दोनों में क्या संबंध है, यही चर्चा भगवत तत्व ज्ञान में होती है। तो यही तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वास्तव में क्या हो रहा है, वो कहानी चल रही है नहीं। चित्रकेतु महाराज वृत्रासुर जो इतिहास में उत्तम स्तर के असुर था, असुर या वार्य और प्रहलाद महाराज इनके पिता श्री और पिता अश्री नहीं श्री श्री हिरण्यकशिपु रूपाचा वो है नहीं भगवत में, पिता श्री हिरण्यकशिपु को संबोधन किया असुर वार्य, असुर जाति में श्रेष्ठ। तो वृत्रासुर उसी प्रकार का असुर था, इतिहास में कितना असुर आ गया चले गया असंख्य, परंतु उनमें कुछ उत्तम है, उत्तम बोलना है या नीचतम, असुरों बोलते उत्तम और वैष्णवों बोलते नीचतम निम्नतम। तो जैसे इतिहास में कितने भागवत अर्थात भक्त प्रकट हुए पृथ्वी पर और ब्रह्मांड में असंख्य, और कितने का नाम है श्रीमद् भागवत में इतना ज्यादा नहीं है, कही सो, क्योंकि भागवत में विशेषकर नवम स्कंद में बहुत नाम की तालिका है नहीं, और भागवत में प्रसिद्ध वैष्णवों का चरित्र का वर्णन है, चित्रकेतु महाराज का जीवन चरित्र कथा हो रही है अभी, और परीक्षित महाराज की कहानी, अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, और ऐसे महान महान भक्तों की चरित्र की कथा होती है, और कुछ असुरों भी। तो बड़े बड़े असुरों में हिरण्यक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण इत्यादि, और उनमें से महान असुर्य श्रेणी में एक है वृत्रासुर, और उनका नाम मूल वेद में भी की, और इंद्रदेव की विशेष ख्याति है इस प्रकार, क्योंकि उन्होंने वृत्रा का वध किया। जैसे भगवान कृष्ण का नाम है मधुसूदन खंसारी, ऐसे जो जो असुर को वध किया उनके संपर्क में कुछ नाम है, कंस के अरि शत्रु खंसारी, मधुसूदन मधु नामक असुर के वध करने वाले मधुसूदन। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण के अनेक नाम, तो इस प्रकार इंद्रदेव भी विख्यात है वृत्रासुर का वध करने से। तो चर्चा हो रहे हैं कि कैसे वृत्र जो असुर बड़ा बड़ा महान असुर था, तो कैसे महान भक्त भी थे असुर एक जन, और भक्त जन का स्वभाव बिल्कुल विपरीत होते नहीं। और शास्त्र में बताया गया कि द्वो भूतो सर्गो लोके इस्मिन दैव असुर एव च, विष्णु भक्ति भवेत् दैव असुरस्तद् विपर्याय। असुरों की मति विपरीत होती है वैष्णवों की मति से। तो ये सब बात हो रही है, फिर भी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यही तात्पर्य में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। क्या है, किसी का याद है? काम दुख। और उसके अनुसार श्रील प्रभुपाद यही श्लोक की व्याख्या करते हैं। वास्तव में हर एक श्लोक के असंख्य प्रकार की व्याख्या हो सकती। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कोय। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रीमद् भागवत कृष्ण के समान है। भगवान कृष्ण जैसे विभु अर्थात सर्वशक्तिमान, सर्वाश्रय सबके आश्रय है, और प्रति श्लोक है, हर एक श्लोक में हर एक शब्द में नाना अर्थ है, बहुत बहुत अर्थ है, प्रकट अर्थ, सूक्ष्म अर्थ। चैतन्य महाप्रभु विशेषकर आत्मा राम श्लोक पर कितना व्याख्या किया? 72 नहीं, 64। सामान्यतः भक्त बोलते 64, लेकिन एक्चुअली 61। क्या बोलते एक साथ ऐसे? 61। और वो सब करके चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को बताए कि वास्तव में असंख्य अर्थ है, आत्मा रामश्च मुनियो, और मुनि कितने जितने भी मुनि है तो हर एक मुनि के प्रसंग में ये श्लोक की व्याख्या हो सकते। तो श्रील प्रभुपाद यही श्लोक में आज की असुरिक समाज के लिए विशेषकर यही व्याख्या की कि परोक्ष रूप से बोलते हैं कि ये सब फैक्ट्री बनाना, हाईवे बनाना, कटल खाना जैसे स्कूल बनाना, ये सब की आवश्यकता नहीं है। और परोक्ष रूप से बोलते हैं कि ये सभी करना जो डेवलपमेंट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्नति, उत्पादन, विकास, ये सब वास्तव में ओ भगवान में अश्रद्धा का लक्षण है, क्योंकि हमें भगवान में श्रद्धावान होने चाहिए। और यही श्रद्धा होने चाहिए कि यदि हम अपना धर्म पालन करेंगे तो भगवान हमको सब कुछ देंगे, मही पृथ्वी देवी के द्वारा। और आवश्यकताओं क्या है, शारीरिक, रोटी, कपड़ा, मकान, वो है, और हवा वो तो मिलता है आजकल विकास से, हवा हम मिलते अलग अलग केमिकल्स डाल के प्रदूषण। भगवान जो हमको दिया वायु, तो आधुनिक महान बुद्धिमान लोग के खेल में वो तो पर्याप्त नहीं है, और ज़्यादा केमिकल्स डालना चाहिए, विशेषकर वडोदरा में और भरूच अंकलेश्वर में भी और भी। तो ये रोटी कपड़ा मकान वो जो शरीर का पालन करने के लिए ये सब पर्याप्त है। और ये तीनों के अतिरिक्त है मनुष्य जीवन में आवश्यकता है ब्रह्म जिज्ञासा, आहार निद्रा, भाई मैथुन, कितने बार हम सुने हैं श्रील प्रभुपाद से, पशुओं भी करते और मानवों भी करते। और यदि मानव जाति में आहार निद्रा भाई मैथुन के अलावा और कुछ भी चिंतन और कुछ भी प्रयास नहीं है धर्म पालन करने के लिए, ज्ञान अर्जित होने के लिए, तो मनुष्य का समाज पशु पशु का समाज जैसे है। तो अनादिकाल से पृथ्वी माता हमारे सब कुछ आवश्यकताओं को देते हैं। पृथ्वी है माता ने, सप्त सब आत्मा माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजा पत्नी का धेनु धात्री तथा पृथ्वी सप्ताय मातृ स्मृत, सत माता है आत्मा माता खुद की माता, शरीर की माता, आत्मा माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजा पत्नी का राजा की पत्नी, धेनु गौ माता, धात्री धात्री ये प्रसंग में धात्री शब्द का अर्थ जो माता जैसे वो शिशु काल में वो शिशु को पालन पोषण करते हैं, विशेषकर जो अपना स्तन से दूध पिलाते हैं। धेनु धात्री तथा पृथ्वी सप्तायता माता स्मृतः। पृथ्वी एक माता है और माताएं की विशेष चिंता क्या है? संतानों का पालन पोषण, वो मातृभाव है ने? वो स्वाभाविक है माताएं के लिए। माताएं तो उनको सिखाने का जरूरत नहीं है। आजकल ऐसा होता नहीं, वो कॉलेज में होम स्टडीज, वो लड़कियों के लिए होम स्टडीज एक कोर्स है नहीं, जो घर में सिखाना है कॉलेज में सीखते, कैसे सफाई करना है और बर्तन सफाई करना वो सब। तो वो स्वाभाविक है माताएं के लिए। और इस प्रकार पृथ्वी भूमि देवी का स्वभाव है उनके सब संतानों को सब आवश्यकताओं को देना। सब केवल मानव जाति नहीं है, 84 लाख जीव जाति है और सब पृथ्वी माता के ऊपर निर्भर करते हैं। उनका आहार, निद्रा, भाई और मैथुन के लिए सब आवश्यकताओं के लिए। परंतु आसुरिक समाज में ये धारणा है कि यदि फैक्ट्री नहीं है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं है, हाईवे नहीं है, ओ सब अभाव है, तो बड़ा बड़ा बिल्ड ये क्या है? वो अलग प्रकार का घर है, आहार, निद्रा, भाई, मैथुन जो हमको आश्रय देते हैं, रक्षा करते हैं बारिश से। नहीं तो भारत में बिल्डिंग बनाने का क्या जरूरत है? तो कितने महीने, 6-7 महीने तो बाहर भी रह सकते, अंदर रहने का कोई जरूरत नहीं है। शीतकाल में 1-2 महीने गुजरात में शीतकाल में थोड़ा ठंडा होते हैं ना, और यही मौसम में बारिश की ऋतु में तो ऊपर कुछ रखना चाहिए। तो बिल्डिंग बनाने का जरूरत नहीं है। और हम वैसे देखते हैं नहीं तो आज तक उत्तर भारत में, मैं एक बार गया था प्रचुर शीत में, वो कुरुक्षेत्र बहुत ठंडा था रात को खास। और आप सब जो वहाँ गए आप सबका याद है कि क्या बोलते हैं, ब्रह्म सरोवर, उसके किनारे में ऐसे कुछ क्या क्या बोलते हैं वो सीलिंग जाए, वो बिल्डिंग नहीं है लेकिन वो कवर है और उसके नीचे वो सब साधु सोते हैं रात को 1-2 कंबल लगा के, और ठंडा हवा आते हैं सहन न करते। लेकिन आजकल यदि हम बिल्डिंग नहीं बनेंगे, उसमें द्वार है, ताला लगाना, तो हमारे सब टीवी, मिक्सी और बर्तन और सब का चोरी होगा नहीं? तो वो समस्या के लिए हमें क्या करना चाहिए? टीवी नहीं रखना, मिक्सी नहीं रखना। अगर कुछ नहीं है हमारे पास तो चोरों से कुछ भय नहीं है, ये हम निश्चिंत रह सकते। हाँ, सरल रूप से जीवन बीतना चाहिए. सरल जीवन और उच्च चिंतन, ऐसे जीवन यापन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना. आसुरिक समाज में वो तो नहीं है, विपरीत हो गया. फिर भी हम देखते हैं कि कल रथ यात्रा में कितने सारे लोग आए हैं भगवान जगन्नाथ का दर्शन के लिए. आज तक इतना ज्यादा आसुरिक प्रभाव होते हुए भी तो फिर भी लोग तो भगवान जगन्नाथ का दर्शन के लिए इतना ज्यादा उत्साही है. वो शाखा के तरफ से क्या है, कुछ प्रोत्साहन नहीं. आए ऐसे MLA आते है और फोटो कुछ निंदा ऐसी कथा नहीं बोलना, लेकिन ऐसे है कुछ पॉलिटिशियन जो धर्म धर्म बोलते है लेकिन खास ज्यादा नहीं करते. वो वास्तव में वो तो नहीं जानते कैसे धर्म पालन करना. आजकल वो सब साधु क्या है, पॉलिटिशियन बन गया, बिजनेसमैन बन गया. तो साधु तो यही प्रचार करना चाहिए. वो पॉलिटिशियन जो है तो श्रील प्रभुपाद जैसे साधु सुनने चाहिए. तो राजा पत्नी का एक माता है नहीं, और राजा इस प्रकार पिता है, और राजा का धर्म है प्रजाओं का पालन पोषण करना. और केवल रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं करना, व्यवस्था करना जिससे सब लोग तो अपना अपना धर्म पालन करेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और पालन करके भगवान हरि की भक्ति करेंगे. यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है. लोग तो नहीं जानते, इसलिए व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत रचना की. अनाथोपशमं साक्षात् भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहितम. तो कैसे हम अनर्थ से मुक्त हो सकते. अनाथ पशमं साक्षात् भक्ति योग अधोक्षज, कृष्ण की भक्ति करने से हम सभी प्रकार के अनर्थ से मुक्त हो सकते. लेकिन लोग तो नहीं जानते, इसलिए भगवान व्यास देव श्रीमद् भागवत हमको प्रदान किए. और आधुनिक युग में श्रील प्रभुपाद हे व्यासदेव के प्रतिनिधि. एक अध्यापक पाश्चात्य देशों में श्रील प्रभुपाद के बारे में बताया कि हम ऐसे अनुमान करते हैं कि भगवान व्यास स्वयं वापस आए हैं श्रील प्रभुपाद के रूप में. अंग्रेजी भाषा में वो श्रीमद् भागवत सर्व पृथ्वी के लोग को प्रदान करने के लिए. तो शास्त्र में सभी प्रकार का उपदेश मिलते हमारा भौतिक विकास के लिए या भौतिक पालन पोषण के बारे में यही बातें हैं. सर्व काम दुखाम ही मही पृथ्वी, जो भगवान की पत्नी है. भगवान कृष्ण है परम पिता है नहीं, और इनकी एक पत्नी है भूमि देवी. विशेषकर वराह अवतार में इन्होंने भूदेवी को पत्नी के रूप में ग्रहण किया, और इनकी प्रसिद्ध स्वयं शक्ति है भूशक्ति. श्री भू नीला विशेषकर दक्षिण भारत में श्री वैष्णव संप्रदाय में आप देखेंगे कि वो उत्सव विग्रह है नहीं, वो भगवान विष्णु, श्री देवी और भूदेवी, ये दो शक्ति प्रधान है भगवान विष्णु के साथ। और भूदेवी भगवान कृष्ण लीला, भगवान कृष्ण की लीला में सत्यभामा है। तो भूदेवी हमारी माता है, कृष्ण भगवान हमारे पिता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब आवश्यकताओं प्राप्त करने के लिए। जैसे बच्चे तो आशा करते हैं कि माता पिता हमको सब कुछ देंगे, वो विश्वास है कि माता पिता हमारे हितैषी हैं। आजकल लोग तो श्रद्धा नहीं करते कि भगवान हमको पालन करेंगे, इसलिए हमें फैक्ट्री बनाना है, हाईवे, ये सब वैद्युतिक व्यवस्था बनाना है, लेकिन वास्तव में ये सब का जरूरत नहीं है। एक बार श्रील प्रभुपाद उनके शिष्यों से निवेदन की कि वो एक पुस्तक लिखो, तो कैसे कृष्ण भावनामृत से सब भौतिक समस्याओं का समाधान हो सकते। और श्रील प्रभुपाद वाले की और सब समस्याओं जो है जो मुझको बताओ मैं उत्तर दूंगा, उसके अनुसार एक पुस्तक लिखो। तो उस समय पेट्रोल प्रॉब्लम था, पेट्रोल का अभाव था। और तो एक भक्त श्रील प्रभुपाद को बताए कि ओ पेट्रोल का अभाव था, तो कृष्ण भक्ति से कैसे वो समस्या समाधित हो जाएगा क्या? हरे कृष्ण फिर वो आकाश से बारिश जैसे पेट्रोल आएगा क्या? ऐसा होगा? प्रभुपाद बोले कि यही समाधान है, पेट्रोल को इस्तेमाल नहीं करना। तो कैसे हम अलग अलग जगह जाएंगे? तो बैलगाड़ी से, वही समाधान है। भोजन का अभाव क्या? वो उस समय तो भारत का सरकार तो अमेरिका से गेहूं मंगलाता था। तो प्रभुपाद बोले तो वो श्रीमद् भागवत गीता में है नहीं, अनाद भवंती भूतानि पर्जन्यादन संभव, क्या है पर्जन्य यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। तो हरि कीर्तन करो और ऐसे कुछ काम भी करना है और सब कुछ मिल जाएगा। और यदि हम थोड़ी श्रद्धा रखते हैं भगवान में तो बिना काम से भी हमारे सब आवश्यकताओं मिलेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद बोले कि हम तो काम नहीं करते, हम खाली भगवान का भजन करते हैं, और हमारा सुख है अधिक मंदिर है पृथ्वी पर, और फिर भी हम सब आवश्यकताओं मिलते हैं और कार भी हम मिलते हैं। हम तो फैक्ट्री नहीं जाते, हम केवल हमारे बुक्स हम दूसरों को देते हैं और उससे हम पैसा मिलते हैं जो भगवान देते हैं, और हमारे पड़ोसियों हमको ईर्ष्या करते हैं क्योंकि हम नाचते हैं गाते हैं ऐसे खुशी रहते हैं और वे बहुत परिश्रम करके कुछ पैसा मिलते हैं और हम कुछ ऐसे कुछ उग्र काम नहीं करते, फिर भी हम सब कुछ मिलते। तो कुछ भक्त वैसे प्रभुपाद को बोले कि वो हमारे पड़ोसियों हमको निंदा करते क्योंकि हम तो काम नहीं करते और वे बहुत बहुत परिश्रम करते हैं पैसा कमाने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि सब पड़ोसियों को बताओ हमारे साथ रहो, भगवान सबको पोषण करते पालन करते, लेकिन उसलिए वे तैयार नहीं है। तो अगर हम हरे कृष्ण वाला बन जाएगा तो शराब पीना मना है, मांस खाना मना है, तो ठीक है हम उग्र कर्म करेंगे। उनका अभ्यास वैसे है और वो अभ्यास पूरा बदलाना, परिवर्तन करना। श्रील प्रभुपाद का प्रचार का एक मुख्य उद्देश्य आजकल का तथाकथित सभ्यता को वास्तव प्रकाश देना, श्रीमद् भागवत का प्रकाश। कृष्णे स्वधाम भगते धर्म ज्ञान आदि सह खलो नष्ट दृशामेश पुराणाखो धुनोदितः। आधुनिक समाज तो पूरा अंधकारमय है, अर्थात तो कौन सी दिशा जाना तो नहीं जानते, गलत दिशा पर जाते हैं, तो नहीं जानते कैसे उनका वास्तविक कल्याण होगा। तो भगवान कृष्ण जो धर्म की मूर्ति है, ज्ञान की मूर्ति है, सब सद्गुण की मूर्ति है, भगवान कृष्ण अपने धाम लौटे गए और फिर भी हमारे बीच उपस्थित है आज तक श्रीमद् भागवत के रूप में, और श्रीमद् भागवत से हम प्रकाश में लेंगे। तो कैसे जीवन बीतना जिससे हम परम श्रेय मिल सकते। तो आजकल इस गलत फहमी बहुत प्रचलित है कि यदि हम बड़ा बड़ा बिल्डिंग फैक्ट्री ऐसे बनेंगे तो वो हमारा श्रेय होगा साइंस के द्वारा। आजकल क्या हो रहा है पश्चिम देशों में, तो साइंस में बहुत लोग की श्रद्धा एकदम टूट गए हैं, श्रद्धा नहीं करते। और भारत में तो साइंस को बहुत मानते। तो श्रील प्रभुपाद तो साइंस के विरुद्ध नहीं थे। प्रभुपाद बोले कि अगर वैसे करेंगे तो करवा दो, लेकिन साइंस का नाम है भगवान को अस्वीकार करना, उसके विरुद्ध हम है। और कि साइंस और ऐसे वैज्ञानिक विकास से हमारा श्रेय होते, वो गलत फहमी से विरुद्ध हम है। तो ये सब रिसर्च करना वो सबका जरूरत नहीं है। जैसे वो साइंटिस्ट वो सब रिसर्च करते तो कैसे घास खाने से गाय का पेट में वो सब परिवर्तित होते और दूध मिलते, और ऐसे हमको सूचित करते तो कैसे वो सब होते, लेकिन इसका जरूरत नहीं है। तो गाय को घास खिलाना और दूध मिलते बस, और जो हमारा प्रयास तो कैसे वैसे होते वो हम जानते हैं। वो भगवान भगवान की सृष्टि है, वो ऐसे भगवान की दया, वो सब कैसे होते भगवान जानते हैं। और भगवान अपना काम तो अच्छा जानते हैं, तो उसमें हमें और ज़्यादा विकास करने का जरूरत नहीं है। जैसे कुछ सालों के पहले वो क्या था भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन, तो कैसे अलग अलग दाना ब्रीडिंग करना, वो क्या बोलते हाइब्रिड फ्रूट ऐसे हाइब्रिड ग्रेन वो सब बनाना है, और विशेष का पंजाब पंजाब से भारत का आधा अनाज आता है। और अभी पंजाब में क्या होता है, तो पंजाब वो कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया है नहीं, क्योंकि बहुत स्प्रे देते हैं नहीं। तो ऐसा होता है, और जितने भी प्लान हम करते हैं तो पहले पहले हम देखते हैं उससे फल हो अच्छा होते, लेकिन बाद में क्या थे, परिणाम है विषम एव वास्तव में विषम। विषेन्द्रिय संयोगम यथाग्रे मृतोपम परिणाम है विषम एव यत्सुखम राजसम स्मृतम। तो ये सब प्लानिंग जिससे वो भगवान जैसे बनाए इससे हम और अच्छा ऐसे और बढ़िया बनेंगे, ये ऐसे प्लानिंग ये सब असुरिक है। तो भगवान जैसे हमको सब कुछ देते हैं तो वैसे हम ग्रहण करना चाहिए और दूसरे दूसरे रिसर्च में मन नहीं लगाना, यही रिसर्च करना चाहिए। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, वो सब ज्ञान प्राप्त करने के लिए तद विज्ञानार्थम सगुरु में वाभिगच्छत, गुरु के पास जानना चाहिए जिससे हम सूचित हो सकते कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमें क्या करना है जिससे हमारा परम श्रेय होते। तद विज्ञानार्थम सगुरु में हम नहीं जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, वो श्लोक क्या है, तस्माद् गुरुं प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तो उत्तम श्रेय तो फैक्ट्री बनाने से नहीं होते, परम श्रेय होते हैं भगवान कृष्ण की अहैतु की भक्ति में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा है आप सब छोटी कथा से कुछ रस मिला, भगवत तत्व रस, इसमें क्या रस है, रस है श्रद्धा से, जिससे हमारी श्रद्धा बढ़ेगी भगवान कृष्ण में।